पैर या शरीर के अवयव नहीं रहे, केवल मात्र आत्मा पड़ा हुआ है, हरे मांस का पिंड हो गया है। तो उसमें आत्मा सिंगार के द्वारा भूषित न होने के कारण खुद सुखी नहीं हुई। अच्छा, यदि हाथ पैर आँख का नाक कुछ मिला, सर्दी मिला, सब कुछ मिला, किंतु उसका उपयोग नहीं कर पाता, अरे दिमाग नहीं है, तभी कोई काम कर नहीं। दिमाग भी है, समस्त वस्तु भी है, उपकरण भी है, किंतु उस वस्तु के उपकरणों को ग्रहण करके उसको इंद्रियों के ऊपर व्यवहार करना भी नहीं जानता है, तो क्या होगा? उनके मालूम नहीं है कैसे किस चीज को कब कैसे व्यवहार करना चाहिए, जानते नहीं। गर्मियों के दिनों में गर्म चीज खा लिया, सर्दियों में ठंडा चीज खा लिया, या जाड़े में तो नंगे सो गए और गर्मी में रजाई ओढ़ लिया। कहने का तात्पर्य है, इंद्रियातीत भगवत तत्व वस्तु के विषय में जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपने आचरण को शुद्ध नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने श्रृंगार के द्वारा भूषित नहीं होंगे, अलंकृत नहीं हो पाएंगे। जब अपने सब वस्तु है, सब तरह की ज्ञान है, सब तरह की रस है, समस्त वस्तु होने पर भी व्यक्ति की योग्यता के अनुजाई वो ग्रहण करते हैं और योग्य बनते हैं। नहीं तो यदि योग्यता नहीं है, ग्रहण करके व्यवहार नहीं करना जानते हैं, तो वो गड़बड़ पड़ जाएंगे, दुखी रहेंगे। ही उपकारी होने पर भी इतना जरूरत मात्रा में खाना है, कभी घी का व्यवहार नहीं भी होना है। ऐसे समस्त दूध दही घी मधु चीनी समस्त सरकार सब वस्तु जगत में बनाया। इस प्रकार आत्मा के श्रृंगार कैसे हुआ, आत्मा कैसे प्रसन्न होगा, उसके लिए ही तत्व को जानना पड़ेगा। तो जब ही हम अपने आत्मा को अलंकृत कर सकेंगे श्रृंगार के द्वारा, अपने आप प्रसन्न होंगे, तो हम दूसरे को प्रसन्न कर सकेंगे। हमें खुशी नहीं, दूसरे को क्या खुशी करेंगे। इसी जो व्यक्ति की आत्मा प्रसन्न है, खुद खुश है, और दूसरे व्यक्ति को अनायास ही अपने मुक्ति में कंट्रोल करने वाला बन जाता है, वही जगत गुरु बन जाते हैं। जिनका आत्मा प्रसन्न नहीं है, खुद ही श्रृंगार नहीं कर पाया, अलंकृत नहीं हो पाए, शिक्षित नहीं हो पाए, योग्य नहीं बन पाए, वो दूसरे को क्या योग्यता प्रदान करें, क्या शिक्षित देंगे। इसलिए सबसे पहले हम अपने को ही अलंकृत करना, श्रृंगार के द्वारा ज्यादा की उपयुक्त बनाने की कोशिश करना है। अब जो लोग राधारानी के चरण कमल में आई थी या आए थे, सभी लोग राधारानी के राज्योत्सव के बाद में सब लोगों को राधारानी शिवा पूर्वक अलंकार के द्वारा अलंकृत कर दी, शोभित कर दी, सजा दिया। किसी के दो सदगुण ने देखा, चित्र नहीं देखे। इसके अंदर ये दृष्टि नहीं है, इसके लिए नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं। उनको दिग्गता प्रदान करके वस्तु प्रदान किया। और अति बलवान जन कखनो निजे चित्र का दोष विस्तार करें ना। जो व्यक्ति योग्य है वो क्या करेंगे, अपने कमियों को कभी किसी को बोलते नहीं, क्या क्या मेरे अंदर कमी
योग्य है।
उनसे जो समस्त गुरु के द्वारा अलंकृत है वो अपने दोषों को किसी को बोलते नहीं, क्या कारण है? यदि बोलेंगे अपने दोस्तों को तो क्या करेंगे मालूम है, जिनके अंदर दिव्यता नहीं है और दोस्त को झट ग्रहण कर लेंगे, गुरु को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उनके प्रति अवज्ञा करेगा, अश्रद्धा करके
उसके कल्याण की वजह से नहीं
बोलेंगे। तो कभी अपने कल्याण आपका कल्याण नहीं कर सकते,
तो अपने से ऊपर वाले
अपने से ऊपर वाले को भी नहीं बोलते हैं, उनका टाइम नष्ट नहीं करते,
तो फायदा कुछ
हर इससे बोलने से पहले आपका है नहीं। ऊपर वाला जानते हैं हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मुझे पता है महात्मा के अंदर में क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण तो है ही नहीं, सब गुण जानते हैं। इसलिए किसी के अंदर कोई अवगुण भी है तो गुरुवर को जान करके उसको उचित ठीक करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं,
बोलेंगे
अपने आप उसको देवता ठीक करके देवता प्रदान करेंगे, बोलेंगे नहीं। बोलने से क्या होगा, बोलने से व्यक्ति का उस विषय में अभिनिष्ट होने के कारण वो आगे उन्नति नहीं कर सकता। यदि आपको बोल दिया जाए आपका ये अवगुण है आप मंदिर मत आना हमारे पास मत आना, उसको उन्नति होगा कभी? अवगुण में पड़े तो वहाँ ही रह जाएगा और वहां से कभी उन्नति की कोई निशाना नहीं है।
गुण बोल दिया वो
है,
गुण बोल दिया वो भी चले।
और यदि गुण बोल दो जरा अब मैं यहाँ का योगा की प्रणाम कर दो और गुण बोल दो तो इतना खुले समाएगा उस समय कोई भगा दी
जाएंगे।
वो तो आप लोग समझ रहे हैं कि हमारे लिए बोल रहे
हैं,
नहीं वो तो कुछ वर्णन कर रहे हैं कि कोई समझ रहा है। आज के सामने क्लास में खूब ठुकाई पिटाई हुआ तो उन्होंने से अब मेरे को देखो मेरे को केवल बोला है ना एक से सबने मेरे को एक ही बात सुनाया मेरे को सुनाया और हमारे सामने एक महात्मा जी है वो तो ना जाने और भी चलित हो गए, वो तो ना जाने क्या हम सोच रहे हैं किंतु कोई बात नहीं है। मैं किसी के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं तो अपने भाइयों के लिए बोलता हूँ। निरपेक्ष होकर भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए वर्णन किया जाता है नहीं, कृपा करने पर भी उनको बोलने से वो समय उनका नष्ट हो जाएगा, इसे दोष की दोष होगा गुण नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति उसको ग्रहण करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे दोष और गुणों का वर्णन न करके उस व्यक्ति को यदि व्यक्ति के द्वारा अपने कार्यभार में कार्यभार समर्पण करके उनको कार्य में लगा दिया जाए तो व्यक्ति अपने आप उसे सुधर जाएगा। आज यदि आप बोलेंगे दोस्त की बात तो अपने दोस्तों की चिंता करके खुद उसके अंदर भी समझ जाएगा, आगे उन्नति नहीं कर सकता है।
अभी हम नवदीप जब गए तो वहाँ पे जो प्रोग्राम में गए उनका सत्ता वो काफी आदमी बाबा जी धर्मराज बोले स्वामी विशेष करके जो है बहुत कुछ बदला
अभी बताते हैं
तो ये बोले स्वामी महाराज जी बदला
शांत रखो अपना कथा बाद में सुनो ना, अभी हम लोग कथा सुनो। बताते हैं बलवान व्यक्ति अपना दोष और अपना जो गुण है वो किसके पास में बखान नहीं करती और किसके छिद्रन्वेषण नहीं करती। बलवान व्यक्ति क्या सभी बल है सभी अपने को जीत लिया है, अपने गुण की बात कहकर के और अपने दोष की कहकर के दूसरे का समय नष्ट नहीं करते। और बताए इससे बताए क्यों नहीं बोलते तब बोलते हैं यदि अपना गुण की वर्णन करेंगे। यदि कृष्ण गीता जी ने बताया अहम ही सर्वदिज्ञानं भोक्ता च भोगुरेव च, मैं ही सब जगहों का एकमात्र भोक्ता हूँ। इसके लिए क्या कहते हैं यदि कृष्ण अहंकार कृष्ण अपने आप अपने को श्रेष्ठ बतलाया इसके कारण बद्ध जी इसी कारण क्या सोचने लगे कृष्ण अहंकार। और जबकि कृष्ण सब राजन वर्गों के चरणों को धोया और राष्ट्रीय यज्ञ में उन्होंने अधिकार ग्रहण किया सेवा का, तब क्या किसने उसके गुण का वर्णन किया कि कृष्ण ने सब व्यक्तियों के चरण धोया? वो तो वर्णन नहीं की, केवल कृष्ण ने अपने को बताया मैं सब यज्ञों का भुक्ता हूँ, मैं अहम ही हम परतरम मैंने किंचित अस्ति धनंजय, मैं परतत्व हूँ हम उससे बढ़कर कोई परतत्व नहीं है। ये सब बातों को लेकर के बद्ध जी दुखी होते हैं। इनसे क्या क्या श्रीमती ने शक्ति संचार करके सब चीजों की योग्यता देकर के अपना कर्तव्य का बोध करा दिया, कर्तव्य में प्रतिष्ठित होने पर सब जी भूल गए दो सदगुण। अब सब जी अपने को क्षुद्र और शिक्षित समझने का अवसर मिला कि मैं योग्य नहीं, ये अपने आप ही समझने लग गए, उनको करने लगे। इसे आचरण के द्वारा दूसरे को जितना सुधारा जा सकता है उपदेश के द्वारा इतना नहीं सुधारा जा सकता। आचरण सबसे बड़ी चीज है, किसने गाली दे दी अपमान कर दिया हम यदि उसके द्वारा उतावला हो गए विचलित चित्त हो गया तो क्या वो व्यक्ति सुधरेंगे कभी? सुधर सकते हैं मार करके पीट करके शासन करके? नहीं सुधर सकते। क्यों? उस वस्तु के द्वारा जब आप खुद विचलित हो गए तो वो व्यक्ति भी उसके द्वारा क्या है? विचलित है। अब जब आप उसके द्वारा विचलित नहीं हुए, आप अपने आचरण के द्वारा, योग्यता के द्वारा और गुण के द्वारा आपने क्या किया? उसको हजम भी नहीं की, उपेक्षा भी नहीं की, घृणा भी नहीं की, ग्रहण भी नहीं की। आप अपने सेवा में, अपने गुण में मस्त हैं। और व्यक्ति भक्ति चले गए, कूड़ा फेंकते चले गए, उनका कूड़ा फेंकना सब समाप्त हो गया। अब क्या करेगा? वो क्या करेगा बताओ? भक्ति चले जा रहे हैं और जितना करना है उसको करते चले जा रहे हैं, उसके समर्थक कब तक का मैं रहेगा? क्या करेगा वो? यदि बोलो, असुर का बल, बल निर्बल का बल राम है और असुर का बल क्या है? काम है। आखिरी समाप्त हो जाएगा, आखिरी समाप्त हो ही जाएगा, कोई काम ऐसा नहीं हुआ। और जो निर्बल है देखने में किंतु प्रभु के भरोसे में, उनका बल खत्म नहीं हुआ। अब क्या होगा? आपके इन योग्यता के कारण, आचरण के कारण वो व्यक्ति आज नकाल कामना पर सुपर्शन पर चाप पर जुट जाएगा। अब यदि आप ही कुछ चंद्र चित्त कर लिए, उताला हो गए, तो व्यक्ति तो सुधरा ही नहीं, बल्कि आपके गुण के द्वारा, उनके गुण के द्वारा आप आकृष्ट होने के कारण आपका बर्बादी गया। वो व्यक्ति भी सुधरे, व्यक्ति का भी सदना हो गया। इसलिए किसी को सुधारना हो तो अपने व्यक्तित्व के द्वारा, आचरण के द्वारा, प्रीति के द्वारा, स्नेह के द्वारा क्या करो? धैर्य के द्वारा उसको सुधार सकते। अपीट फर्ट है तो नहीं हुआ। उसने सफल देखा है, मैंने दो मार दिया लाश, तो कभी नहीं सुधरेगा। तो बोलते हैं कुछ बात और नीतिवादी लोग बोलते हैं, छठ सुधरा ही सत्संग पाए। छठ व्यक्ति सुधरते हैं सत्संग में आके। कैसे? सब लोग क्या गोली बंदूक लेकर जब तनाइसी करते, मारपीट करते नहीं करते। उनके बाद दो वस्तु है क्या? स्नेह और सत्संग में कृपा। स्नेह का नाम भूल नहीं सकते, दूसरे पाखंडी होने पर भी वो नहीं स्नेह करना छोड़ सकते, उनका धर्म नहीं छोड़ेंगे। और कृपा करना, कैसी कृपा करते हैं?
हैं?
ये तो नहीं, भगवत कथा, भगवत ज्ञान, भगवत गुण के द्वारा। वो जाने मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या है? भगवत कथा है, भगवत गुणगान है, जो हो है, इसके द्वारा दूसरे घंटे को स्वरों को तृप्त कर देते। नहीं तो और कोई योग्यता के द्वारा क्या स्नेह है? परिकथा कीर्तन करना, यही कृपा है। दोनों वस्तु का एक ही तात्पर्य पर है। और नहीं तो और कोई वस्तु के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा आप एक व्यक्ति को क्या अपने को भी नहीं सुधार सकते। जहां हरि कथा है, हरि के प्रति प्रीति किसको लगा दिया जाए तो व्यक्ति अपने आप सुधरेंगे, हरि के रस पान करते, हरि रस पान करते। नहीं तो जगत के जीवों को सुधारने का कोई उपाय नहीं है। शासन के द्वारा, उपेक्षा के द्वारा, घृणा के द्वारा और उनको मारने पीटने के द्वारा वो व्यक्ति कभी किसी जन्म में नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधर सकते। योग्यता कहां से आएगा? मार तो दिया, योग्यता दिया, पात्र बनाया, भूखे हैं आप, एक व्यक्ति उसको खूब आप प्रशंसा कर रहे हैं, खूब सम्मान कर रहे हैं, गले में सोने का हार पहना दिया, कपड़ा को पहना दिया, क्या उनको भूख मिट जाएगा? हैं? थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा, किंतु भूख के मारे प्राण जा रहा है, सोना दाना कपड़ा गलत सब खेच करके मर जा रहे, खाने को नहीं कर दुनिया भर वाले उनको एक रोटी के टुकड़ा, चाहे सूखे रोटी के टुकड़े मेवा में तभी दो ना, तो भूखे व्यक्ति खा करके भैया बड़ा प्राण बचाया तेरे आज में, सात दिन तक मैंने कुछ खाया ना, हर कदम बैठ रहे थे, किधर कदम सुन रहे थे, मुंह गैस रहा इतने, मैं समझ गया क्या हालत बहुत खराब है। घर में जाकर हाथ पकड़ के लगा के उसमें चार रोटी या थोड़ा पानी दे दी, ठीक तो गए, बड़ा खुश हो गया वो। इसलिए बताए जैसे भूखे व्यक्ति, इस प्रकार हम लोग जन्म जन्मांतर के, जन्म जन्मांतर के हम लोग भूखे हैं, पियाते हैं, स्त्री का मुतवाला हो रहे हैं, काम और जोर सता रहे हैं, पीड़ित है, शिकार हो चुके हैं उनके। आज जब हमारा रस पान करके तृप्त हो जाएंगे, सरस जाएंगे तो क्या करेगा? इसी बात संसार पुकार कारण आती भी यह रोग दूर जाते। कब कब दूर जाएगा? जब हम रस से तृप्त है, क्या जरूरत दुनियादारी की? भूखे नंगे तब तक है जब तक हमारे पास में वो रस नहीं है। और वो रस की तरह तृप्त हो जाने पर केव अभिलाषा होगा, अर्थ की, स्त्री की, मकान की, सम्मान की, दुकान की, दारिद्रता की, धनी की कोई जरूरत नहीं आएगा। जब तक वो रथ का अधिकार प्राप्त नहीं करते, जब तक ऐसे स्नेह करने वाला कोई मिलता नहीं, जिनकी गति में चर्चा करके बड़े आनंद से आप पालित पोषित होंगे, हमें क्या चिंता है। अब मुश्किल था जब तक हम घर में थे, घर पर गए, जैसे गुरु जी के चरण में आए, उनके चरण में पड़े हैं, क्या चिंता है, मामला की चिंता नहीं, मुकदमा की चिंता नहीं, खाने की नहीं, पीने की नहीं, पहनने की नहीं, रक्षा की नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं है, बड़ा आनंद है। आज जब तक शरीर को लेकर के शरीरदारी जीवों के पास में पड़े थे तब तक दुख था, इसलिए शरीर पान नहीं किया जब तक, तब तक हमारा दुख है। तो बताते हैं यही हमारा सबसे बड़ा श्रृंगार है, ये श्रृंगार के द्वारा पूजित होने पर, सालंकृत होने पर, तभी श्रीमती की कृपा होने पर हम लोग उनका राज्य में वो अधिकार प्राप्त करेंगे, हम लोग भी प्रजा बड़े प्रसन्न होंगे। इसके बाद क्या होते हैं, अनंत पिता पूर्व से सत्य भगवती पूर्णवास निकट जैसा के लिए अध्ययन कला करा जुक्ति युक्त नहीं आगामी कल तीन सन्मांस करेंगे, हे बड़े अपना हस्त हस्ते विनयुक्त भूमि करा पुष्प कुटीर भक्त जाल विस्तार पूर्वक कार्य में हाथ दया आकर्षण पूर्वक पत्नी व्यक्त कर लेंगे। सभी लोगों ने क्या सोचा, कितना बने लें सके मेरे साथ, तुम्हें हमारे प्रेसों के सिंहस में क्या आरंभ कर लें, कृष्ण बने हे मुग्धा ब्रजवाला ब्रजवाने राजा हमारे तो पट्ट देवी रूपे उन्हें उचित कह दे, एक बार पर्व पर जैसे विवाह प्रेमी संवाद सम्मेलन प्रति लाभ कर लो, भगवान उत्सव अनायन कर लो। कृष्ण क्या किया, तो फिर उतर करके सिंहासन से थोड़ा नीचे आई और किसी काम से फिर जाकर सिंहासन बैठ गई, सबसे अगर अरे रात सिंहासन तुम कैसे बैठ गए, निकलो यहाँ से उतरो, और लग गया बात भी बात झगड़ा, खूब झगड़ा लग गया और झुटमुट का क्रोध करके सब लोग बोले चलो अभी भगवती पूर्णिमा जी को जा रहे हैं और शिकायत करेंगे तुम्हारे नाम से, उनका किसको तुम हमारे सब के रात सिंहासन में जाकर बैठ गया है, आज कलह शुरू होगा, तो नहीं ठीक है आज उत्सव के दिन आज कलह मत करो, काल जाकर मिलना होगा। अतः हम लोग ऐसे उत्सव परिमंडित गुरुवर्ग के सामने भी हम आ गए, वो भी आकर के प्राकृत अभिमान और दूर का सब भूल नहीं पाए, जो संसार से इकट्ठे करके ले आए वृत्ति और अपना भावना विचार योग्यता वो सब ला करके यहाँ भी लागू करना शुरू करती है। घर में माँ थोड़े आए तो यहाँ माँ बना लिया, बुआ थोड़े आए तो बुआ बना लिया, भैया थोड़े आए भैया बना लिया, लोमड़ी कुत्ता छोड़े आए तो बिल्ली और कुल्ली सबको अपना लिया, उसने खाली कपड़ा गिला जो कुछ मिले जो कोई कुछ दे दे सभी अपना है। एक टांट टुकड़े यदि वहां हटाने जाओ ना तो ही लगे डंडा लिखा गया, हमारा टांट तू कैसे लेने आया, तेरे घर का तू ले जा हमारे घर का तू लेता है, लग गया थोड़ा क्यों पूर्व वृत्ति छोड़ नहीं पाए ना, मिठा सूख मुक्का पलंग का हम जानते हैं हम कितने दिन के, फिर भी आप जाऊंगा कितना भी ठोकर लगाओ कितना भी कुटाई करो पिटाई करो जाता नहीं, इसे बोलते हैं कृष्ण देख रहे हैं सिंहासन पे बैठ के, अरे बच्चे को राखी दे दो या कभी दे दो हाथ में, फिर उसे हाथ में ले लो देखो कैसे जीना कैसे चिल्लाएगा कैसे गाली करेगा कैसे पॉलिटिक खाएगा तलामंडी खाएगा, दिया किसने, बाप ने किया, बाप भी नहीं सकता, ऐसे कृष्ण कहते हैं भैया ये राज सिंहासन अधिकार राज्य मैंने दिया और मैं सिंहासन में बैठ ही सकता हूँ, ये हमारे लिए दुर्भाग्य, गुरुदेव सब कुछ देते हैं योग्यता गुण अधिकार अध्यापक सब दे दिया, किंतु गुरुदेव भी आपको शासन नहीं कर सकते कुछ नहीं कह सकते, और गुरुदेव का कोई अधिकार नहीं, हम गुरुदेव के शक्ति लगते हैं। इसलिए बताते हैं हम श्रृंगार के द्वारा बार बार ये प्रसंग आया, कई बार आया, पलट पलट करके दिखाया, हम श्रृंगार के अलंकृत होने पर भी ये श्रृंगार किसके प्रति के लिए, कृष्ण प्रति के लिए, भगवत प्रति के लिए, हमारा हाथ पैर कान नाक नाक जो कुछ है यदि हम भगवान की सेवा में व्यवहार करेंगे तो ये उपयुक्त है, नहीं व्यवहार करना सीखेंगे तो ये कीड़े मकोड़े के राज्यता हो जाएगा। इससे युवक की तरह लीलाए चिंतन पति गुप्तन अवस्था देख किया मिट्टा कलम प्रलाप सुनिया बिंदा देवी हंस करके प्रकाश के बल चला गए, तुम्हारे अहंकार प्रयोजन नहीं, ये बिंदा भी कहने लग गई अरे क्यों कला करती हो तुम लोग करते हो, मस्तर करो हमारे वनपति आ गया और वनपति कभी श्रीमती को भोजपुर करेंगी तभी तो राजा है। तुम लोग कहते तुम्हारे श्रीमती राजा है ठीक है तो राजा बने हैं तो उपयुक्त सम्मान सबको देकर के उनके हृदय को जीत लेंगे तभी तो राजा है। तो राजा बनने के बाद में ब्राह्मण को देवताओं को उपयुक्त सम्मान नहीं दिया फिर राजा की बात कर सब जानने के लिए राजा बनते तुम लोग कला करती जानती नहीं बुद्धि नहीं राजा का बुद्धि है पूछो राजा को। तो राजा कह दिया है उपयुक्त व्यक्ति आया तो राशि ज्ञान छोड़ करके भी उनको नीचे बैठना चाहिए समझ में आया। तब तो राजा है बोले हमारे राजा सब जानते तब सब जयकार देने लगे बिंदा देवी ऐसे बुद्धि ऐसे डिमांड बुद्धि नहीं होता मंत्री तो फिर राजा का राजस्व चलता नहीं ठीक है जैसे राज्य सिंहासन अरे ये नहीं कर रही तो खुश हो जाएगा और क्या देगा हमारा हमारा योग्यता तो नहीं मिल सकता राज सिंहासन का अधिकार हुआ वो दिग्दर्शन नहीं सकते अर्थात जब हम अलंकृत होंगे सिंहासन द्वारा समस्त योग्यता हमारे अंदर आएगा तो क्या करना है उदारता भी आएगा सब कुछ देने को लिए समर्थवान हो जाएंगे लेकिन क्या ले जाएंगे सब देने पर क्या होगा जिसका दान दे दिया उसका क्या मिला एक इंद्र को इंद्र तपस किसी समय एक जन को मिला था तो क्या किया एक पाप बहुत पाप किया तो पाप करने के बाद विचार सभा में गए तो जब लोग गए तो उनको पूछा क्या काम किया बोले एक पुण्य किया क्या बोले एक दिन जब उसके नाम किया तो उसका फल क्या है बोले एक दिन आगा मन गया इंद्र तो अच्छा नहीं पाप ने परिणाम नहीं थी उसने दान दिया था एक मिट्टी डेला एक साधु को तो इसके फल क्या होगा एक दिन के लिए इंद्र बनेगा एक मिट्टी का डेला दिया था बताओ वो आटा बनाने आए उसको मिट्टी का डेला उनके झोली में डाल किया बदमाशी उसके फल हुआ क्या स्वर्ग के एक दिन के लिए राजा बनेगा एक एक मुहूर्त के लिए उसने बोला अच्छा कौन फल लेगा बोले पहले लूंगा दान का इसके बाद भोगूंगा पाप अच्छा चालक था क्षत्रिय था तो जबकि उसे स्वर्गलोक में ले गए ना राजा बना दिया इंद्र इंद्र कोई गए थे थोड़ी देर के लिए उसने इंद्र के छत्र कुंड चामर छत्री सची और जितने राज गए सब दान दे हवाए जब महाराज लेने के लिए बोले अब बोलो पहले मैंने एक मिट्टी का डेला साधु को दे के एक मूर्त के राजा बना अब तो मैंने सारा स्वर्ग दान कर दिया अब मेरा फल क्या होगा बताओ जमराज बाहर चिंता पड़ गए आके भाई है मिट्टी देके स्वर्ग में राजा बने और राजा बन के सब दान देगा वो क्या बनेगा ये ऐसे साधु लोग जगत में कुछ काम अच्छा किया था तो साधु बने भगवान की सेवा में आए अब यहाँ करके ऐसी सेवा करने लग गए अब उसको क्या मिलेगा जब राजा नहीं बने थे तब तो सम्मान देते ही अब राजा जब बन गए राज सिंह को भी दे दी अब बताओ अब क्या मिलेगा अब क्या बनेगा राजा के राज्य में जाकर के उनका अधिकार प्राप्त कर अब राजा पद अब वो क्या होगा अब वनपति के भी हृदय जीत गया अब वनपति हार गई पहले सिंहासन में बैठे तो झगड़ा करने लग गए जैसे हमारे गुरु के आसन में कोई बैठ जाए ना हम मारेंगे नहीं उसको झगड़ा करेंगे किंतु यदि गुरु जी ने उनको सिंहासन बैठा दिया तो गुरु का गुरु तो कम हो गया कि बढ़ गया समझ में आ रहा है अरे जगत गुरु है कभी तो ये सब कर सकते हैं इस प्रकार आज बिंदी हंसते हंसते बिल्कुल पागल हो गई लेकिन क्या मूर्ख है तुम लोग इतना नहीं समझती हमारे राजा का कितना बड़ा उद्धार है हमारे राजा अब तुम इतना छोटे सी गिन वाले हाँ सब लोग जय जयकार देने लगे बिंदा देवी की जय हो बिंदा देवी की जय वृंदावन की जय हो राधावन की जय हो कृष्णवन की जय हो ऐसे बिंदा देवी बुद्धिमती एक कथा है सम्राट जी क्या अनुभव करा गणपति को मजबूत कर दिया मुकुंद दकान राधा अनुभवी ने मुक्त किया बन चलाए नहीं काम थे क्या ना तुम्हें सुंदर मनुष्य भी मोट विदा क्षेपण प्रतिशत शाम सुधारी कथा बढ़ी आई राधा रोने लग गई उनको सांत्वना देने लग गई अर्थात श्रीमती सबके हृदय को जीता था जब शाम सुंदरी नहीं जीते अब शाम सुंदरी के हृदय को भी जीत लिया हाँ राज्य अभिषेक की बात कृष्ण पहले कभी नहीं जानते थे न समझते थे आज जब रत्नवेदी के ऊपर समस्त राजचिन्ह के द्वारा विराजित थी अब कृष्ण देख करके आश्चर्यचकित हुए कृष्ण पुनः पुनः दर्शन करने लगे अब बता रहे हो यादव का नाम करो उन्होंने जुगत की सुंदर जी शरीर नवतारणीय मंदिर सद्गुणा जी साम्राज्य अखिल संपत्ति धन सृष्टि कला सभा आदिशास्त्र संगीत समय परिषद आदि शास्त्र वेद कृतज्ञ आदिशास्त्र महादुपी शास्त्र निकुंज गृह आदि निकुंज वन में आज माधव और राजा राधा को देखकर जी और उनके हृदय को जीतने के बाद अब वो राधा माधव के लिए उनका नाम पड़ गया। पहले आदरणी अकेले थी, अब माधव के हृदय को जीत लिया राजस्व कर ली, इसलिए उनका नाम राधा माधव हो गया। बस गोपन को कठिन व्याख्या, पहले आदरणी आधा माधव के अलावा राजा तो राजा तो बनी जो पूरे राजा नहीं। अब जैसे माधव को जीत लिया, अरे माधव विश्व ब्रह्मांड के नायक है, जो इनको नहीं जीता
सब रह गया,
तो सभी रह गया, क्या राजा बने
दिया,
क्या राजा बने। अब जब माधव को जीत लिया पूरा राजस्व साधारण कर गया, बस अब राजा माधव की जय हो। बताया सत्य रूप अनुरोध चिन्ह मनोरम रूप लिया प्रकाश दर्शन का परिश्रम किन कर्तव्य विमूल हो गया। आप सत्या सब क्या सोचेंगी क्या करेंगी कुछ नहीं समझना था, वो लोग फेल हो गए, अब सब लोग फेल हो गए, सब लोग को चेतना खत्म हो गया। तब सब लोग आकर के सिंहासन के चारों तरफ परिवेष्टित होकर के कृष्ण और आदरणीय के सभा का दर्शन करने लगे। हाँ बलपूर्वक क्या किया, सखा की बात करने लगे, सखा आज आपके हृदय को हम लोगों ने जीत लिया, इसलिए हमारा इस राज्य संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया, आज मन राज्य में हम लोग विराजमान। अब बताइए आपके मन में हम लोग है कि नहीं, पूछ रहे राजा मंडल पूछ रहे ये राज्य में हमारा अधिकार है कि नहीं,
किसी से
पूछ रहे, क्योंकि अब तक तो बहुत हो गए थे ब्रजवासियों के लिए, सताओं के भी थे, दासों के भी थे, माता पिता के भी थे, सब थे, अब हमारा है कि नहीं पूछने लगे। इसे क्या जवाब देंगे, कृष्णा के पास जवाब देने की कुछ नहीं है, पर देखो हमारे संपत्ति हम जैसे व्यवहार करेंगे करेंगे, इसके ऊपर आपका कोई अंकुश नहीं रहेगा, ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोला, क्या बोलते हैं आप यथेच्छ विचरण कर सकते, जहाँ भी कहीं भी जा सकते हैं, सर्वत्र विचरण कर सकते हैं, हम लोग को छोड़ के आप रहिए, तब हम जाने आप स्वतंत्र, हमारा राज्य नहीं है, हमारा जो अधिकार है राजस्व है, तो हम लोग को छोड़कर के आप कहीं नहीं जा सकते। ऐसे उदाहरण देता कि बच्चे आराम इजाज में नौकरी करने गए, तो किस विषय कहाँ घर में कहाँ, हमारा छोटे नन्हे मुन्ने कैसे हैं, पैसा कहाँ मिलते हैं किसी के लिए, तो उनके दिल में कौन विराजमान है, राज्य तो कौन कर रहे हैं स्त्री, इस प्रकार से बताते हैं आप विश्व ब्रह्मांड के नायक होने पर भी आज वृंदावन के राजा आपको अधिकार कर लीजिए, इसलिए अब आप इस वृंदावन को छोड़कर जाइए, तब मैं जानू, अगर वृंदावन को भूल जाइए कृष्ण उस समय हार करके बोले मैं सदा के लिए ही अपना राज्य समर्पण कर दिया, और तब मैं आप लोग हो गया। ग्रंथ समापन की अभी कब थी, श्री गुरुदेव गोस्वामी पाद कौटिक उपदिष्ट दान करने कुमुदी नामक ग्रंथ आंशिक वर्णित काव्यकर्ण संपूर्ण हुई, शुल्क साहब प्रभु दान करी कुमुदी नामक ग्रंथ प्रकाश किए थे, छोटा सा ग्रंथ बहुत सुंदर, उसका उदा आंशिक उसको संपूर्ण करने के लिए ये राधा माधव महोत्सव रूपी ग्रंथ प्रकाश हुआ।
दान के लिए कुमुदी का
यदि कभी भगवान कृपा उम्र होए और बूढ़े बूढ़े हो जाए, तब गोवर्धन के तरटी में ऐसे ग्रंथ पाठ करेंगे खोल के, ऐसे नहीं छिपा छिपा करके, अभी तो बोलने लायक नहीं, कोई योग्य व्यक्ति भी अयोग्य व्यक्ति भी सब तरह से मिला मिला जुड़ा, ये तो बिल्कुल एक रस में एक जगह में इसका अध्ययन होना चाहिए, मैं तो क्या सच एक केस के समान भी नहीं वर्णन किया, सब छिपा कर गई क्या, अब बताए हमार बुद्धि मेधानुसार किंचित गुप्त बने के समर्थ हो गया, तो मैं चेष्टा किया बोलने की, मैं प्रकाश करने में असमर्थ रहा गोपन लगती सभी तरह दूर वर्णन दूर था सामान्य तो बनते बैठ लगना, मैं विस्तार पूर्वक वर्णन कहने की इच्छा थी लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कह पाया, चंद्र जात वृत्त परम राज वृत्त संपूर्ण गर्भ वृत्त बोलिया परिस्तुत है, क्या इच्छा देगी हमें गर्भ में बच्चा है किंतु कोई कह नहीं सकता है कुआं लड़की के पेट में बच्चा आ गया, कोई हिम्मत लगे कह नहीं सकता मैंने यहाँ बच्चा तैयार किया, क्योंकि बोलने से उसका बात ठीक ही होगा, लड़की कुआरी है। इस प्रकार ये ग्रंथों को ग्रंथ के अंदर मैंने कुछ रख दिया, लेकिन मैं नहीं कह सकता मैंने रखा, साधारण कृपा पूर्वक जो कुछ यहाँ पर आप प्रकाश की माधव्य निष्ठा इतना भाग्य से हम लोग का होगा। जब भी गुरुदेव की आज्ञा दुर्गा ग्रामा के ऊपर दिया से मटकी गुरुदेव आज्ञा पालन करते पाल रूप से उपदेश दिया था मुझे, मैं संपूर्ण नहीं कर पाया, इसलिए ये कार्यक्रम जो मैंने किया प्रत्येक के व्यक्ति यदि होंगे तो क्या अनुसार आस्वादन कर लेंगे, स्पष्ट मात्र ही इसके अंदर अवधान करके वो पूरा रस को आस्वादन करेंगे, इसमें कोई अन्यथा नहीं है, और तब हमारा चेष्टा फलवती होगा, तब दिव्य बोलना है तब मेरा चेष्टा फलवती होगा, यदि भक्त लोग आस्वादन करेंगे और प्रकाश करेंगे। मैंने केवल मात्र सूत्र रख दिया, जैसे गर्भ संचार करते हैं 10 महीने बाद बच्चा होगा, किंतु उस दिन क्या मालूम करते कैसा होगा लड़का लड़की क्या होगा क्या नहीं होगा उस दिन जानते नहीं, इस पर हमें ग्रंथ की इच्छा दे दी, भक्त जन आस्वादन करेंगे अगर तीत होंगे रसस्त होंगे तब मेरा जीवन सार्थक होगा, और दर्शन करने वाले अगनासन कृष्ण दर्शनकारी व्यक्तियों को दर्शन देकर सफल मनोरथ करेंगे। ब्रजभवन में जो राजासन में प्रियतम कृष्ण की गोदी में साक्षात रूप में उन्मत्त श्री राधा रानी बैठी बैठी समस्त कृपा रूपी लक्ष्मी वितरण कर रहे हैं, सबका कल्याण विधान कर रहे हैं, मतलब राधा ने कहाँ बैठे हैं कृष्ण की गोदी में, वहां से समस्त जगत को कृपा वितरण कर रहे हैं, ये है राज सिंहासन, कृष्ण की गोदी है सिंहासन, वहां पर कौन बैठे हैं श्रीमती, उनके अलावा और कोई नहीं बैठा, सभी उनका राज्य का विचार है, यह है ग्रंथ का मूल तात्पर्य। ऐसे हम लोग कैसे भगवान की गोदी में बैठ सकेंगे, कैसे हम लोग को ऐसे स्थान मिलेगा, इसके लिए बता रहे हैं जहाँ तात्पर्य निधि परम सिद्ध श्री महादत्ता स्वरूप सेवा विचार ने सर्वराज्य प्रेम भक्ति दान कर दी थे, श्री महाभगवान कृष्ण देव का मैंने सेवा करी, श्री कृष्ण से पूज्य बात के रूप में भजन करी, बता रहे ये महाबदान स्वरूप जो कृष्ण के स्वरूप में रह करके सेवा विचरण करने वाला प्रेम भक्ति दान कर रहे हैं, जो कृष्ण गोदी में सदा विराजमान है जहाँ राज्य सिंहासन में प्रवृत्त है, ऐसे रूप से उनको मैं नित्य भजन करता हूँ, उनके चरणाश्रय करता हूँ। इति नव मुंडा ग्रंथ रचना काल वृंदावन में पता जीव नामक मंडल एक काव्य पूर्ण किया, गिरधारी पार्षद में हृदय विराज गिरधारी के चरण कमलों को हृदय में रख करके ये वृंदावनवासी जीव गोस्वामी प्रभु वृंदावन में बैठ करके ये ग्रंथ समाप्त किया। आज नहीं कर सकते बंसा कर करो कृपा सुंदर है बच्चे परेशान नहीं हो
अरे इनको छोड़े
हो गया समाप्त अभी की इसका परिचित है
कितना
कितना सुन गया आदेश है मेरे लिए महाराज अभी फोन करना है, ऐसे काल आए हैं महाराज जी आज सत्र में देखा नहीं करेंगे अर्थात कोई भी वस्तु जब स्वयं प्रकाश होते हैं तो उनके साथ साथ में शक्ति भी समाये हुए रहते हैं, शक्ति में कोई वस्तु जगत में नहीं है, प्राकृत हो चाहे अप्राकृत हो, प्राकृतिक शक्ति तो दूसरे वस्तु के द्वारा आता है तो हम लोग उसमें प्रभावित हो जाते हैं, जैसे किसी ने गाली दे दी गंदी बातें कही प्रतिष्ठा की बातें कही वहाँ प्रभावित हो जाते हैं, अप्राकृतिक शक्ति में क्या है वो दूसरे के द्वारा प्रभावित होकर के जैसे जल जगत में हम लोग विकसित हो जाते हैं, और अप्राकृतिक शक्ति के द्वारा प्रभावित होने पर उसके द्वारा आकर्षित होने पर उसका विकसित नहीं होता, क्या होता है चित्त विचार योग्य होकर के उसमें धीरे धीरे प्रवेश करते हैं मनन करते हैं, और जगत में को प्रशंसा किया तभी हम विकसित हो गए, और को निंदा किया और हमारा बुराई की हम तभी विकसित हो गया, प्रभावित हो जाते उसके द्वारा विचार करने की शक्ति ही हो जाते हैं। डॉक्टर के उसमें तो विचार क्षमता आता है, जैसे क्या आता है शांति मिलते हैं, तथा सपने हम उस चीज को आसन के त्याग नहीं दे सकते, जैसे गंदे चीज आसानी से टैग नहीं किया जाता, गंदे नशा गंदे वस्तु के आवेश उससे भी अपराधी के दोस्त और भी शक्ति सामने, किंतु वो उसके द्वारा कौन प्रभावित होगा उसके लिए वर्णन कर रहे हैं, उसके लिए एकमात्र प्रभावित होगा शुभ्र आत्मा, साफ सुथरा स्वच्छ निर्मल आत्मा ही प्रभावित हुआ। सब बोलते हैं तेज पुंज ज्वल उज्ज्वल वर्ती प्रकाशन स्मितम अद्भुतम, वो तेज राशि भगवान की जो शक्ति उद्देश्वरी ऊर्जा श्रीमती राधारानी के जो कृपा प्रकाश किसी के हृदय में यदि आया और गए स्वच्छ निर्मल शुभ्र पवित्र कमनीय सरस और स्निग्ध ऐसी हो जाएगा आर्द्र हो उज्जवलता एक पुंज सदा की पुण्य लग जाता है, अर्थात उनके हृदय सब समय आनंद से भरता ये ही नहीं तो तेजराशि के द्वारा उनके हृदय सबसे प्रकाश मान देता है, पदम अंधकार खाने प्रस्थापित ऐसा हम खरे आनंद में रहते एक जन आकर के पड़े मेरा बदनामी कर दी अपमान कर दी कर दी हम उसी जब आनंद को भूल करके सुख के द्वारा अभिभूत हो जाएंगे, और ये भगवद्रास हृदय में आने पर कभी अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता, उसको ढक नहीं सकता, जैसे सत प्रकाश सूर्य को कोई भी ढक नहीं सकता, आंख हमारे मेघ हमारे आंख को ढक देता है थोड़ी देर थोड़ी दूर तक हम दिख नहीं सकते सूर्य को, किंतु सूर्य किंतु ये तेज पुंज प्रकाश करने पर ऊर्जा के राधारानी की कृपा होने पर उस तेज को कोई नहीं ढक सकता, मेघ नहीं है बादल उमा नहीं है, कितना भी देखेंगे आंधी तूफान झंझट आ जाएगा उनका चित्त सदा प्रसन्न रहेगा, सदा अनुद्विघ्न उद्विघ्न नहीं सदा संतोष प्रसन्नता सब समय आनंद रखेगी, बहुत आनंद में रहेंगे, जो दुख आया वो दुख भी दुखी होकर के भाग जाएगा, दुख भी ठहर नहीं सकता। इसलिए वर्णन करते हैं हम साधु कैसे पहचाने, कहां से साधु का लक्षण मुझे मालूम पड़ेगा, और हम लोग जीवन को नष्ट न कर डाले इसके लिए यहाँ पर आखिरी में परिचित समय बता दिया कौन रसिक है कौन प्रेमी है, किसके पास हम जाएं तो पहला लक्षण बताया ये तेज पुंज राशियों को कोई नहीं ढक सकता, अंधकार हुआ आ नहीं सकता, अर्थात मन ही मन होगा नहीं, कितना भी गाली दीजिए तिरस्कार कर लीजिए सभी असंतुष्ट होंगे नहीं, उपेक्षा करेंगे नहीं, नाराज होंगे नहीं, हृदय मलिन हुआ नहीं, असंतुष्ट होंगे नहीं, घृणा उनके हृदय में नहीं है, तो क्या भगवत विरोधी व्यक्ति पर भी घृणा नहीं होगा, दुख होगा हाय हाय ये भगवत विरोधी इनके हृदय में भगवान के उस प्रति प्रेम नहीं, भगवान सबसे पहले इनको कृपा गुरु व्यक्ति तो दूर कर दूर रहे जो जदा पति है निर्गुणी अगर जिनके अंदर कमियां हैं उनको पहले क्षति लगाई, ये क्या पक्षपात है नहीं, दुख से दुखी है वो व्यक्ति अपना कल्याण को जानता नहीं जानता इसीलिए उसके लिए दुखी है। आज जो व्यक्ति अरे एक माँ बाप के बच्चे कम आता है होना रहे पढ़ा लिखा है जो जो है घर मकान है उसके लिए माता पिता सोचते नहीं, आज जो बच्चा कमजोर है हाथ से कमजोर है पैर से कमजोर है धन से कमजोर है पढ़े लिखा नहीं है माँ बाप सब समय उसका पेट काट काट करके उसी को देगा और उसके लिए सोचेगा तो क्या फिर हम ऐसे ही बन जाए? नहीं, भगवान ही भक्त बड़े दयालु होते हैं, इसलिए जिनके अंदर में वो भगवत रस प्रवाहित होगा वो कभी भी किसके द्वारा अभिभूत होने वाला नहीं है। तेज गुंजरस को कोई ढक नहीं सकता, वो ऊर्जा को छिपाया नहीं जा सकता। जहाँ भी वो ऊर्जा आ जाएगा वो अपने आप ही स्व प्रकाश हो जाएगा, सारा जगत उनके पास खींच के आएगा, जगत के पास उनको जाने की जरूरत नहीं होगा और जगत आकर के लाभान्वित हो जाएगा, बड़े आनंदित हो जाएगा, प्रफुल्ल हो जाएगा, खुशी हो जाएगा, आनंद से हृदय भर जाएगा, वहां पर उनका उद्वेग नहीं रहेगा। उद्वेग तब होगा जब वो चुपचाप हो जाएंगे, मुंह बंद करने तब जी का पड़ेगा, वो नहीं बच सकता उसको यदि मुंह बंद कर लिया तो। जो भाई वो जो स्रोत है जी रस को पान कर रहे हैं, जैसे माँ का दूध बच्चा पीता है तो पेट भरने पर माँ छोड़ देती है, किंतु जब आठ पेट में होते हैं तो क्या माँ छोड़ सकती है? नार में से सदा ही रस जा रहा है, अब कितना जा रहा है? बहुत सारा, जितना जरूरत, एक महीने में कितने चाहिए, दो महीने में कितने चाहिए, तीन महीने में कितने चाहिए, दस महीने में कितने चाहिए, ऑटोमेटिक जा रहा है। इस प्रकार उस भक्तों से संतोष जो हमारा बाध्यक्रम से मिले उस रस को पान करें, सब देखो क्या होता है। इसलिए वो व्यक्ति उस रस से कभी उठ जाएगा नहीं, पान करके चला जाएगा कभी हो और अतृप्त नहीं रहे, तृप्त नहीं होगा और कभी भी उबेगा नहीं, अर्थात दुखी नहीं हो जाएगा। इसलिए भाई ये ऐसे व्यक्ति कौन थे? ऐसे व्यक्ति तेज पुंज ज्वल उच्चद वर्दी प्रकाशम स्निग्धम अद्भुतम धूलि विसर्जांगम च जलद बाष्प समन्वित, कौन थे? हमारे सनातन गोस्वामी। सारा शरीर धूल के सब समय सनाते रखते, क्यों? गोपियों के चरणों की धूल नहीं लगा शरीर में, हम यदि कपड़ा पहन करके बाबू बन करके बैठ गए, साबुन और तेल से मालिश और पालिश करके धूल और मिट्टी को सारा हटा दिया, आज यदि मैं मरा तो मैं कहाँ जाऊंगा? कितने पत्रों पर मकराना बन के जन्म लूंगा। आज यदि धूल लगा रहेगा तभी फिर भी गोदी में घास भूसा होकर के जन्म लेंगे, परोपकारी बनेंगे और अपना भी जीवन सार्थक हो जाएगा। ये गोपियों के चरणों के रस जो रस पृथ्वी देवी ने पिया उसको तो पीकर के आप भी तृप्त हो जाएंगे, पुष्ट हो जाएंगे, फल फूल से पल्लव इस प्रकार से जगत का कल्याण के लिए करेंगे। और खूब पालिश और मालिश करके टिकना बना करके धूल और मिट्टियों से गोपियों के चरण रस से बचाएंगे तो मर करके पत्थर होंगे और जाकर के लगेंगे बड़े बड़े महलों में, फिर काल के लिए वहां पड़े रहेंगे, कोई रस मिलेगा नहीं, हृदय वज्रस मह जाएगा। इसलिए वज्रस पान करना है तो कहता धूलि दूसरी चांगन का गलत बात को समान निकल, धूलि दूसरी चांग बात पर उस बात का पुनः रिएक्शन क्या बोल रहे हैं? हेलो
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 आप तो बोलने आप जा रही है गोपाल बल मर गई, तब तो अम्मा जाएगी इसके,
वो अब कह रही हूँ मुझे तो मना कर रहा हूँ, तो दिल्ली में कर दूंगी
जल्दी जा रही
ना, और
दिल्ली में
नहीं
अंदर इसी आ रही हूँ अम्मा।